स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मार्च की 31 तारीख और दिन रविवार। गजा में हजारों फलस्तीनियों का विरोध प्रदर्शन। मोदी के गुजरात में इस बार कितनी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस?
2017 में भी शहरी इलाकों को वो ब्रीच नहीं कर पाई कांग्रेस, लेकिन बीजेपी जो है ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में कमजोर है।
छत्तीसगढ़ में आज से क्या बंद हो जाएंगे दाल भात सेंटर?
1 अप्रैल से दाल भात सेंटर जितने 2004 से जो शुरू हुआ था उसके लिए चावल देना बंद कर दिए।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इजरायली सीमा के पास हुए प्रदर्शन में 4 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा कि सीमा से लगी 6 अलग अलग जगहों पर करीब 40,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सीमा की दूसरी तरफ से इजरायली सेना पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। इजरायली सेना ने इसके जवाब में आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पश्चिमी अफगानिस्तान में आई बाढ़ के चलते कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि तेज बारिश के चलते सैकड़ों मकान ढह गए हैं। बाढ़ के पानी में कई अस्थायी आश्रय आवास भी बह गए हैं। कुल मिलाकर 7 प्रांत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें फरियाब, बगदिस और हैरत प्रांत सबसे अधिक प्रभावित हुए। शिर अहमद नामक एक शख्स हैरत इलाके में रहते हैं। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताया।
هم خونه ما هم هم کشاورزی ما تهدید کرده که به طور کل به شما بگم
میرا گھر اور کھیت سب کچھ باڑ میں بہ گیا، اگر آپ وہاں جا کر باڑ سے ہوا نقصان دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ تھے باڑ سے پربھاوت ایک شخص کے شبد۔ وینزویلا میں وپکش نے سرکار کے ورودھ میں دیش بھر میں پردرشن شروع کر دیے ہیں۔ राजधानी कराकास के कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की खबरें भी मिली हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया है। विपक्षी नेता खुआन ग्वाइदो ने देश में पैदा हुए बिजली संकट का विरोध करने के लिए रैलियां बुलाई हैं। कराकास में एक रैली को संबोधित करते हुए ग्वाइदो ने लोगों से मौजूदा शासन को खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रपति मादुरो और उनकी सरकार को हमारे जीवन के साथ और अधिक मजाक नहीं करने दे सकते। वे हमें अंधेरे में नहीं धकेल सकते। हम अपनी ताकत और साहस के जरिए इस शासन को समाप्त कर सकते हैं। हम एक साथ मिलकर मादुरो सरकार को हरा सकते हैं। ये थे वेनेजुएला के विपक्षी नेता खुआन ग्वाइदो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मध्य अमरीकी देशों अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरस को दी जाने वाली सहायता रोक दी है। इसके पीछे उन्होंने अमरीका में लगातार बढ़ते अवैध प्रवासियों को वजह बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ये देश अमरीका में आने वाले प्रवासियों को रोकने में नाकामयाब रहे हैं, इसलिए उन्हें दी जाने वाली सहायता रोकी जा रही है। डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इससे प्रवासी समस्या को बढ़ोतरी होगी। ब्राज़ील में एक संघीय अदालत के जज ने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें ब्राज़ील में हुए सैन्य तख्तापलट की वर्षगांठ का जश्न मनाने पर रोक लगाई गई थी। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो 1964 में हुए सैन्य तख्तापलट का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन देश के तमाम दूसरे राजनीतिज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते एक अदालत ने इस जश्न पर रोक लगा दी थी। अब दूसरी अदालत ने इस आदेश को पलट दिया है। बोल्सोनारो का कहना है कि वह सैन्य तख्तापलट एक लोकतांत्रिक क्रांति का प्रतीक है। अल्जीरिया में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच वहां के सैन्य प्रमुख ने आरोप लगाए हैं कि देश में मौजूद कुछ समूह सेना को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। शुक्रवार को हुए बड़े विरोध प्रदर्शन में लोगों ने न सिर्फ राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बौटफ्लिक के इस्तीफे की मांग की थी, बल्कि सेना के कमांडर को हटाए जाने की मांग भी सामने रखी थी। स्लोवाकिया में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का मतदान समाप्त होने के बाद नतीजे सामने आ गए हैं और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता और वकील जुजाना कुपटोवा को जीत मिली है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की उम्मीदवार को हराया है। इसके साथ ही वे स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मार्च की 31 तारीख और दिन रविवार और इस वक्त हो चुके हैं भारत में 6:34:45। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत फलस्तीनी गजा से। इसराइल की सीमा पर साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन की बरसी पर कल हजारों फलस्तीनी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और टायरों में आग लगाई। जवाबी कार्रवाई में इसराइली सैनिकों ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर फायरिंग की। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए नवीन नेगी से।
गजा में हजारों फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सीमा के पास शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी इजरायली सीमा पर होने वाले साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की सालगिरह मनाने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सेना पर जलते हुए टायर, पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, जबकि इसके जवाब में इजरायली सेना ने भी आंसू गैस के गोले दागे। खबरों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ये तमाम प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उनके पैतृक निवास स्थान में लौट जाने के अधिकार का समर्थन करते हैं। इनका पैतृक निवास स्थान अब इसराइल में शामिल हो चुका है। बाहा अबू शमालाह नामक एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि वे गजा में तैनात इजरायली सेना का अंत देखना चाहते हैं।
We are here in Gaza. We are oppressed people. We want to feed our children. We want to get rid of this huge trauma that we suffered.
हम यहाँ गजा में बहुत ही उपेक्षित महसूस करते हैं। हम अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। हम इस अत्याचार से निकलना चाहते हैं जो कि बीते 12 सालों से इसराइल हमारे ऊपर कर रहा है। ये थे एक फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी के शब्द। शनिवार को हुए प्रदर्शन के बारे में इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरिकस ने बीबीसी को बताया कि बीते कुछ वक्त में सीमा पर होने वाली हिंसा में कमी आई है।
We had approximately 40,000 demonstrators and rioters in 6 different locations along the border, but unlike
शनिवार को सीमा से सटी कुल 6 जगहों पर लगभग 40,000 प्रदर्शनकारी मौजूद थे। हालांकि पहले की झड़पों के मुकाबले अब इन विरोध प्रदर्शनों में होने वाली हिंसा में कमी आई है। पहले फलस्तीन की तरफ से IED बम, ग्रेनेड आदि फेंके जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये थे इजरायली सेना के प्रवक्ता के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली सेना के बीच हुए संघर्ष में कम 189 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 1 इजरायली जवान की जान गई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि इजरायली सेना ने प्रदर्शनकारियों के साथ युद्ध अपराध किए। हालांकि इसे इजरायली सेना ने इनकार कर दिया।
तो गजा में फलस्तीनियों का विरोध प्रदर्शन। और अब बात भारत के लोकसभा चुनाव की। 26 लोकसभा सीटों वाला गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह दोनों का गृह राज्य है और करीब 20 साल से भाजपा वहां सत्ता पर काबिज है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और युवा नेताओं की तिकड़ी यानी हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर से मिली कड़ी टक्कर के बाद आगामी लोकसभा चुनावों में गुजरात भाजपा के लिए बेहद अहम बन गया है। इस बार भाजपा के सामने क्या है चुनौतियां और क्या कांग्रेस 2017 की तरह ही अपना प्रदर्शन बरकरार रख पाएगी, सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की रिपोर्ट।
2017 में गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा की 22 साल पुरानी सत्ता को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी भले ही सरकार न बना पाई, लेकिन न केवल उसने भाजपा को 100 का आंकड़ा छूने से रोका बल्कि अपनी सीटों में इजाफा कर 78 सीटें भी जीती। बात लोकसभा चुनावों की करें तो 2014 में सभी 26 लोकसभा सीटें भाजपा के ही खाते में गई और अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन्हें बरकरार रखना। आज के हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं, इस सवाल के उत्तर में आरके मिश्रा समझाते हैं।
कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो शहरी इलाके हैं। निसंदेह 2017 में भी शहरी इलाकों को वो ब्रीच नहीं कर पाई कांग्रेस, बीजेपी का कर रहा। लेकिन बीजेपी जो है ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में कमजोर है।
उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी ट्रेंड यही रह सकता है। अजय उमट कहते हैं कि आज की स्थिति में लग रहा है कि कांग्रेस 10 सीटों पर काफी मेहनत कर रही है और भाजपा के लिए ये सीटें चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती हैं। वो कहते हैं इसमें आदिवासी बहुल इलाके, केंद्रीय गुजरात और ग्रामीण गुजरात के इलाके शामिल हैं।
जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली, सुरेंद्रनगर ये 5 सीट सौराष्ट्र में, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन और मेहसाना ये 4 सीट नॉर्थ गुजरात में और 5 जो ट्राइबल सेक्टर में। मेहसाना तो इतनी चैलेंजिंग है कि वहाँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने नितिन पटेल जो अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी प्रस्ताव पारित करके कहा कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन नितिन पटेल ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया।
अजय उमट कहते हैं कांग्रेस तो आज 26 सीटों पर फोकस भी नहीं कर रही है।
उनकी स्ट्रेटेजी है कि 13 सीट पर फोकस करो और कम से कम 8 या 10 सीट जो है वो जीतने की कोशिश करो।
वो बताते हैं कि सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की किल्लत अभी से दिख रही है और खुद गुजरात सरकार ने कह दिया है कि वो खेती के लिए पानी मुहैया नहीं करा पाएगी। साथ ही मूंगफली और कपास का न्यूनतम मूल्य न मिल पाने जैसे कारणों से किसान अब भी नाराज हैं और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। गुजरात में 2017 में 3 नए युवा नेता बड़ी भूमिका निभाते नजर आए थे। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल, ऊना कांड से उभरे दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर। इन तीनों ने भाजपा को काफी परेशान भी किया था। फिलहाल मेहसाणा के विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ के एक मामले में हार्दिक पटेल की सजा पर रोक से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्रा कहते हैं
वो एक 21 साल का बेरोजगार लड़का था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ उसको नेता बना दिया एक तरीके से, और अब वो ऑलरेडी उसका स्टैचर बढ़ के उस लेवल पर पहुंच गया है कि वो गुजरात की बाउंड्री से बाहर निकल गया। वो फास्ट पे बैठता है तो निरे ऑपोजिशन के लीडर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स दौड़ के आते हैं, ममता वहां से आई थी। हार्दिक का स्टैचर बीजेपी और सिर्फ बीजेपी ने बढ़ा के इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि आज वो उनके गले में जो है कांटे की तरह उलझ गया है।
अजय उमट कहते हैं
मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में जो पैरवी की और उसको नहीं चुनाव लड़ने दिया, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ गुजरात में बाकी प्रदेशों में भुगतना पड़ेगा।
अजय उमट कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाटीदार वोट निर्णायक होगा और इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी अवश्य पड़ेगा। अल्पेश ठाकुर की बात करें तो उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें अभी भी ताजा हैं और फिलहाल वो शांत दिखाई देते हैं। रही जिग्नेश मेवाणी की बात तो अजय उमट बताते हैं कि उनके तेवर अभी भी आक्रामक हैं और वो भाजपा के विरोध में प्रचार में लगे हुए हैं। कहा जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्साहित कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं और कुछ कुछ उसकी रणनीति भी उन्हीं इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने की है जहां भाजपा कमजोर है, और सीधे तौर पर हो या परोक्ष तौर पर उसे कम से कम 2 युवा नेताओं का समर्थन भी मिलेगा। लेकिन भाजपा के 100% के घेरे में कांग्रेस कितना बड़ा सेंध लगा सकती है ये देखने वाली बात होगी। मानसी दास, BBC, दिल्ली।
और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जोर शोर से अपने अपने चुनाव प्रचार के काम में जुट गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी और BSP गठबंधन यानी मायावती और अखिलेश यादव ने अब तक चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं किया है, क्यों बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार में बीजेपी के मुकाबले गठबंधन की उपस्थिति अब तक नगण्य सी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो मेरठ में रैली के साथ न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, बल्कि आगे भी उनकी कई रैलियां प्रस्तावित हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पार्टी के दूसरे नेता भी लगातार चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। वहीं दूसरी ओर गठबंधन की पहली चुनावी सभा 7 अप्रैल को सहारनपुर में रखी गई है, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले गठबंधन के तीनों दलों की न तो कोई संयुक्त सभा हुई है और न ही इन पार्टियों की कोई अलग चुनावी सभा कहीं प्रस्तावित है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम इसकी वजह बताते हैं।
बीजेपी के पास अथाह पैसा है, इसलिए वो पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समाचारों में, एजेंसियों में, समाचार पत्रों में इनका आक्रामक रवैया है, लेकिन जनता इनके कार्यों से एकदम क्षुब्ध है, आक्रोशित है और पूरा जनता इनको परिणाम दे देगी अभी इसी चुनाव में। प्रचार प्रसार का तरीका हमारा बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मिलके बूथ प्रबंधन को ठीक कर रहे हैं और मतदान कराने के लिए सारे लोगों से मिल करके ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रहे हैं नीचे हर बूथ में।
नरेश उत्तम कहते हैं कि गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं बजाय बड़ी रैलियों के। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करके मुकाबले को न सिर्फ दिलचस्प बना रखा है बल्कि अब तक चुनावी शोर में भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस की आवाज ही ज्यादा तेज मालूम पड़ रही है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और बीएसपी नेता मायावती बीच बीच में ट्विटर के जरिए राजनीतिक बयानबाजी में जरूर शामिल रहते हैं लेकिन दोनों नेताओं ने अब तक अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार जैसी कोई गतिविधि शुरू नहीं की है। यही नहीं, गठबंधन के तहत बटी सीटों और उन पर बार बार बदल रहे उम्मीदवारों के कारण कार्यकर्ताओं में भी मायूसी है लेकिन सामने इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। समाजवादी पार्टी को लंबे समय से कवर कर रहे पत्रकार परवेज अहमद कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि दोनों दलों के नेताओं को राजनीतिक रणनीति का कोई खास अनुभव नहीं रहा है।
संसाधन की तो कोई कमी किसी के पास है नहीं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 30 सालों तक सपा बसपा आपस में एक दूसरे को राजनैतिक रूप से नीचा दिखाने की लड़ाई लड़ते रहे। अखिलेश यादव के पास सिर्फ मुलायम सिंह की बनाई हुई धरातल पर चली हुई राजनीति थी और ठीक इसी तरह मायावती जी ने भी जमीन पर कोई नया पौधा या पौधे को सींच कर संगठन के कुछ आगे नहीं बढ़ाया है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के साथ कोई परस्पर संवाद का प्लेटफॉर्म अब तक खड़ा ही नहीं किया है, इसीलिए दोनों लोग एक साथ कभी कहीं प्लेटफॉर्म पर भी नहीं नजर आ रहे। अगर कुछ प्रचार कर भी रहे हैं तो उनके प्रचार को गति देते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा एक कोण इसका यह है कि मीडिया के साथ भी इन दोनों दलों का कुछ तरह का संवाद नहीं है।
परवेज अहमद की माने तो इसका असर न सिर्फ कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ रहा है बल्कि चुनावी परिणाम में भी दिखने की पूरी संभावना है। नरेश उत्तम बीजेपी से नाराजगी में गठबंधन की जीत की संभावना भले ही देख रहे हैं लेकिन जानकारों की माने तो जरूरी नहीं कि इस नाराजगी का विकल्प सिर्फ गठबंधन ही है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब अखबारों की समीक्षा के लिए मौजूद है नवीन नेगी। बताए नवीन।
जी इकबाल जी, आज दिल्ली से प्रकाशित कई समाचार पत्रों में कल जम्मू कश्मीर हाईवे पर हुए कार धमाके की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय हाईवे पर जवाहर टनल के नज़दीक एक कार जो है वो सीआरपीएफ सैनिकों को ले जा रही बस से टकराई और उसके बाद उस कार में धमाका हो गया। हालांकि वो कार तो खाक हो गई लेकिन सीआरपीएफ की बस को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ और इसमें किसी चरमपंथी संगठन का हाथ है या नहीं अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी एक और खबर है जिसमें ये बताया गया है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा या अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात होगी या उसको खत्म किया जाएगा तो केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर का संबंध भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये बात दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक ब्लॉग के संबंध में कही है जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 35A को जम्मू कश्मीर के विकास में रुकावट बताया था। और चुनाव से जुड़ी हुई खबरें भी अखबारों में छाई हुई हैं जिसमें कल भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से अपना नामांकन पत्र भरा था उससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें अलग अलग अखबारों में छपी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में जो तस्वीर है उसमें एक बड़ी सी फूलमाला लिए अमित शाह खड़े हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अन्य सहयोगी दलों के नेता भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। और चुनावों से जुड़ी हुई खबर उत्तर प्रदेश से है जिसमें हिंदुस्तान में ये खबर छपी हिंदुस्तान अखबार में जिसमें बताया गया कि निषाद पार्टी जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार तो है लेकिन सीटों को लेकर अभी उनके बीच पूरी तरह से जो है बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। और एक खबर जो राजधानी दिल्ली की है वो ये कि दिल्ली में तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है 3 दिन में।
बहुत शुक्रिया नवीन नेगी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में पिछले 16 सालों से 10 रुपए में भोजन देने की सरकारी योजना कल से बंद हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए कम कीमत पर चावल देने पर रोक लगा दी है। सुनिए आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट।
2003 में जब छत्तीसगढ़ में पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी उस समय राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी पहली योजना के तौर पर राज्य भर में गरीबों के लिए 5 रुपए में दाल भात उपलब्ध कराने की अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी। बाद में दाल भात केंद्र में मिलने वाले भोजन की कीमत बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई। इस महंगाई के जमाने में 10 रुपए में भोजन के लिए दाल भात केंद्र पर भीड़ लगी रहती थी और हर दिन अलग अलग शहरों में हजारों लोग यहाँ भोजन करते थे। लेकिन राज्य से रमन सिंह की भाजपा सरकार की विदाई के साथ ही अब इन दाल भात केंद्रों को रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। केंद्र के इस कदम के बाद राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से इन दाल भात केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार के कारण इन दाल भात केंद्रों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा।
1 अप्रैल से दाल भात सेंटर जितने 2004 से जो शुरू हुआ था उसके लिए चावल देना बंद कर दिए। हमारे प्रदेश में 128 दाल भात केंद्र संचालित हैं, उन सबको बंद कर, उस चावल नहीं मिलेगा तो बंद किया जाएगा।
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार गरीबों के खिलाफ फैसले ले रही है।
बंद करने से यही स्पष्ट होता है कि सरकार गरीब विरोधी सरकार है। केंद्र की सरकार न गरीबों की चिंता है न किसानों की चिंता है, वो तो केवल अपने बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है।
हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना था कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में केंद्र ने रियायती चावल देने से इनकार किया है।
जब इतने दिन तक 2004 से लगातार चल रही है तो आज ऐसे कौन से परिस्थिति आ गई कि केवल 12,000 लोगों के लिए चावल केंद्र सरकार बंद कर दे। गरीबों के मुंह से निवाला बंद हो, इस जवाबदारी से सरकार बच नहीं सकती।
अपने कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे राज्य सरकार की विफलता करार दिया और कहा कि राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहे तो अपने स्तर पर चावल का इंतजाम कर सकती है।
दाल भात केंद्र तो बड़ी योजना है, यदि सिर्फ चावल नहीं मिलता तो चावल की वजह से इतना रोना क्यों रो रहे हो? छत्तीसगढ़ में चावल है, सब्सिडी हम 1 रुपए किलो चावल देते हैं। गरीबों के लिए योजना है, 150 करोड़ में सिर्फ आरोप लगा देना और ऐसे वित्तीय स्थिति में कुचक्र में छत्तीसगढ़ को फंसाने का षड्यंत्र है।
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में चावल को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इस मामले में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। मतलब साफ है, अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा चावल भी होगा, यह तो तय है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आज रविवार है और आज है पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की सुर्खियों का। तो इस पूरे हफ्ते किन खबरों ने बनाई सुर्खियां, बता रहे हैं नवीन नेगी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात भारत पाकिस्तान आपसी संबंधों की। पाकिस्तान का कहना है कि 27 फरवरी को जो भारतीय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसमें सवार 5 लोग मारे गए थे, वो किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ था बल्कि उसे खुद भारतीय सेना ने मार गिराया था। अखबार जंग ने अपने पहले पन्ने पर इस बारे में लिखा है जिसकी सुर्खी है, भारत ने अपने ही 6 फौजी मार दिए, हेलीकॉप्टर भी तबाह। अखबार लिखता है कि भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया जिसका भांडा खुद भारतीय मीडिया ने फोड़ दिया। भारतीय मीडिया के हवाले से अखबार लिखता है कि भारतीय सेना मरने वालों के परिजनों और पूरे भारत से झूठ बोलती रही। अखबार नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई है, पाकिस्तानी वायुसेना से भयभीत भारतीय सेना ने अपना हेलीकॉप्टर खुद ही मार गिराया है। अखबार लिखता है कि भारत ने 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना से झड़प के दौरान घबराहट में मिसाइल दागकर अपना हेलीकॉप्टर खुद ही मार गिराया था। भारतीय सेना दोस्त और दुश्मन की पहचान ही खो बैठी है। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर मामले में 2 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत को स्थगित कर दिया है। अखबार एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, करतारपुर कॉरिडोर बातचीत से भागा भारत। अखबार लिखता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2 अप्रैल को करतारपुर कॉरिडोर के बारे में होने वाली बातचीत को स्थगित कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान से कुछ मामलों में और जानकारी मांगी है। पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले पर निराशा जताई है। नवाए वक्त लिखता है कि करतारपुर कॉरिडोर पर होने वाली बातचीत से ठीक पहले भारत का भाग जाना समझ से परे है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में सिखों के धार्मिक स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंचने के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बारे में 2 अप्रैल को बातचीत होनी थी लेकिन भारत पीछे हट गया। पाकिस्तान ने इसके कवरेज के लिए भारतीय मीडिया कर्मियों को वीजा भी दे दिया था। भारत के एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी का एक बयान भी पाकिस्तानी मीडिया में इस हफ्ते छाया रहा।
भारतीय सेना के उत्तरी कमांड के एक पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने एक ब्रितानी थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS को संबोधित करते हुए कहा है कि इंफॉर्मेशन वॉर के मामले में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया है। जनरल हसनैन का ये बयान सारे अखबारों के पहले पन्ने पर है। अखबार दुनिया ने इस पर सुर्खी लगाई है, तारीफ वो जो दुश्मन करे। अखबार के अनुसार इस मौके पर जनरल हसनैन ने कहा कि अगर किसी ने सिखाया है कि खबरों के साथ कैसे खेला जाता है तो वो पाकिस्तानी सेना का संपर्क विभाग ISPR है। जनरल हसनैन ने कहा कि ISPR ने भारतीय कश्मीरियों को न सिर्फ भारतीय सेना से बल्कि भारत की जनता से भी दूर कर दिया है। और अब बात पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की। सारे अखबारों ने बढ़ती महंगाई के बारे में हफ्ते भर लिखा है। अखबार जंग में सुर्खी लगाई गई है, महंगाई 4 साल में सबसे अधिक, 8 महीने में 33 अरब रुपए कर्ज लिए गए। अखबार के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 अप्रैल 2019 से ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करते हुए 10.75% करने की घोषणा की है। अखबार लिखता है कि पिछले 8 महीने में सरकार ने स्टेट बैंक से 3300 अरब पाकिस्तानी रुपये कर्ज लिए हैं। सरकार अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए बैंकों से कर्ज लेती रही, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो अर्थव्यवस्था की हालत और चिंताजनक हो जाएगी।
ये थे नवीन नेगी और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। IPL 12 में कल इस सीजन का सबसे रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें पहले तो निर्धारित 20 ओवर में दोनों टीमों ने समान रूप से 185 रन बनाए और उसके बाद टाई होने से फैसला सुपर ओवर में हुआ, जहां दिल्ली 3 रन से मैच जीतने में कामयाब रही। सुपर ओवर में कोलकाता को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन तेज गेंदबाज रबाडा के सामने वो 1 विकेट खोकर 7 रन बना सकी, जबकि दिल्ली ने सुपर ओवर में 1 विकेट खोकर 10 रन बनाए थे। इससे पहले कोलकाता ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर आंद्रे रसेल के धुआंधार 62 और कप्तान दिनेश कार्तिक के 50 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 185 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने भी पृथ्वी शॉ के 99 और कप्तान श्रेयस अय्यर के 43 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 185 रन बनाए। जो भी हो, दिल्ली मैच जीतने में कामयाब रही। इससे पहले कल ही खेले गए पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने अपने ही घर मोहाली में खेलते हुए मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से रौंदा। जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य पंजाब ने KL राहुल के नाबाद 71, मयंक अग्रवाल के 43 और क्रिस गेल के 40 रनों की मदद से 18.4 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल किया। उधर भारतीय हॉकी टीम कल मलेशिया के इपोह शहर में समाप्त हुए सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण कोरिया से पेनल्टीज में 4-2 से हार गई। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थी। वहीं इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज महिला एकल वर्ग का फाइनल तीसरी वरीयता हासिल चीन की विंग जियाओ और चौथी वरीयता हासिल थाईलैंड की रतचानो किंतानोन के बीच खेला जाएगा। कल भारत की पीवी सिंधु सेमीफाइनल में ही बिंग जियाओ से 23-21, 21-18 से हार गई, लेकिन भारत के तीसरी वरीयता हासिल के श्रीकांत चीन के वांग यू जियांग को 16-21, 21-14, 21-19 से हराकर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे, जहां आज उनका सामना दूसरी वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा।
और चलते चलते एक बार प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इजरायली सीमा के पास हुए प्रदर्शन में 4 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मध्य अमरीकी देशों एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और हॉन्डुरस को दी जाने वाली सहायता रोक दी है। ब्राजील में एक संघीय अदालत ने जज के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें ब्राजील में हुए सैन्य तख्तापलट की वर्षगांठ का जश्न मनाने पर रोक लगाई गई थी। अल्जीरिया में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच वहां के सैन्य प्रमुख ने आरोप लगाए हैं कि देश में मौजूद कुछ समूह सेना को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। स्लोवाकिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता और वकील जुजाना कपुटोवा को जीत मिली है। वे स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। मोजाम्बिक प्रशासन का कहना है कि पिछले 48 घंटों में बेरा बंदरगाह पर हैजे से पीड़ित लोगों के कई मामले सामने आए हैं। پشچمی افغانستان میں آئی باڑھ کے چلتے کم سے کم 32 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ افغانستان کے راشٹریہ آپدا پربندھن پرادھیکرن نے بتایا ہے کہ تیز بارش کے چلتے سینکڑوں مکان ڈھہ گئے ہیں۔ بی بی سی سماچار۔
نمسکار بھارت کا یہ انک یہیں سماپت ہوتا ہے۔ آج اسٹوڈیو کی ذمہ داری سنبھالی شاکر عالم نے۔ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی شام 7:30 بجے کاریکرم دن بھر میں، لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں بی بی سی کی ویب سائٹ پر۔ اور اقبال احمد کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ نمسکار۔